अध्याय संख्या 11 शैक्षिक संप्राप्ति का मापन मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा छात्रों के व्यवहार में कुछ पूर्व निर्धारित संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं। शैक्षिक संप्राप्ति से तात्पर्य इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से है। छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, यही उनकी शैक्षिक संप्राप्ति को बताता है। शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परीक्षणों का वर्णन किया गया है। शैक्षिक संप्राप्ति का मापन मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। शैक्षिक संप्राप्ति से अभिप्राय छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रा से है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा छात्रगण अपनी विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का विकास करते हैं। छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया है, यही उनकी संप्राप्ति का सूचक होता है। शैक्षिक संप्राप्ति के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इन परीक्षणों को कई आधार पर बांटा जा सकता है। प्रथम, उपयोगों के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज। परीक्षणों के उपयोग के आधार पर इन्हें निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, संप्राप्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट। सेकेंड, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट DIAGNOSTIC डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकेंड, निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। परीक्षण की निर्माण विधि के आधार पर परीक्षणों को अग्रांकित दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, अध्यापक निर्मित परीक्षण टीचर मेड टेस्ट। सेकेंड, मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तृतीय, प्रकृति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। परीक्षण में प्रयुक्त प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, निबंधात्मक परीक्षण एसे टेस्ट। सेकेंड, वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चतुर्थ, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। परीक्षण में प्रश्नों एवं उत्तरों की अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, मौखिक परीक्षण। द्वितीय, लिखित परीक्षण। तृतीय, प्रयोगात्मक परीक्षण। पंचम, माध्यम के आधार पर परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। परीक्षण में प्रश्नों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर परीक्षणों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, शाब्दिक परीक्षण वर्बल टेस्ट। द्वितीय, अशाब्दिक परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट। इन भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षणों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। संप्राप्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट। संप्राप्ति परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो छात्रों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में छात्रों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए संप्राप्ति परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी निश्चित समयावधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किसी एक या अनेक विषयों में छात्रों के ज्ञान व समझ में हुए परिवर्तन का मापन करने वाले उपकरणों को संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं। संप्राप्ति परीक्षण प्रायः शिक्षा उद्देश्यों पर आधारित होते हैं तथा इनसे उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। शैक्षिक संप्राप्ति का मापन परीक्षणों के प्रकार दो भागों में विभाजित हैं। संप्राप्ति परीक्षण, द्वितीय निदानात्मक परीक्षण, फिर अध्यापक निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक संप्राप्ति का परीक्षण वह है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध या कौशलों के मापन के लिए बनाया गया हो। ईबेल EBEL के शब्दों में संप्राप्ति परीक्षण वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया गया हो। रैमर्स, गेज तथा रूमेल के अनुसार संप्राप्ति परीक्षणों को किसी दिए गए कार्यक्षेत्र में छात्रों की सापेक्षिक संप्राप्ति को एकमात्र प्राप्तांक से व्यक्त करने के लिए बनाए गए परीक्षण में के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संप्राप्ति परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम, शैक्षिक स्तर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना। द्वितीय, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। तृतीय, अध्यापन कार्य में सुधार लाना। चतुर्थ, छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन व परामर्श देना। पंचम, प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना। षष्ठ, छात्रों के वर्गीकरण व प्रोन्नति में सहायता करना। सप्तम, अध्यापकों का मूल्यांकन करना। अष्टम, शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का निर्धारण करना। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण संप्राप्ति परीक्षणों का ही एक रूप है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य संप्राप्ति परीक्षण से अधिक व्यापक होता है। संप्राप्ति परीक्षण किसी विशेष विषय में अथवा विषयों के समूह में छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान का मापन करते हैं, परंतु निदानात्मक परीक्षण उस अर्जित ज्ञान की विशिष्टता तथा ज्ञान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। निदानात्मक परीक्षण में प्राप्त सूचनाओं के विस्तृत विश्लेषण से छात्रों की कमजोरियों का पता चल जाता है, जिनसे उनकी अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में तथा अध्यापकों की शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन करके उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग किया जा सकता है। रैमर्स, गेज तथा रूमेल के अनुसार निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण परीक्षित किए जा रहे किसी एक या अधिक क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की कमियों को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ईबेल के शब्दों में निदानात्मक परीक्षण को अध्ययन के किसी विषय जैसे पढ़ना या अंकगणित के अधिगम करने में आई विशिष्ट कमजोरियों या असफलताओं को सामने लाने के लिए बनाया जाता है। ईबेल के शब्दों में निदानात्मक परीक्षण को अध्ययन के लिए किसी विषय जैसे पढ़ना या अंकगणित के अधिगम करने में आई विशिष्ट कमजोरियों या असफलताओं को सामने लाने के लिए बनाया जाता है। स्टोडोला STODOLA तथा स्टोडहल STORDAHL के अनुसार निदानात्मक परीक्षण का निर्माण प्राथमिक कौशलों जैसे पढ़ना या अंकगणित की विशिष्ट जानकारी तथा कमजोरियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि निदानात्मक परीक्षण एक प्रकार से संप्राप्ति परीक्षण ही है, परंतु इसका उद्देश्य संप्राप्ति परीक्षण से भिन्न तथा व्यापक है। यह विषय विशेष में छात्रों की कठिनाई, कमियां या कमजोरियों को ज्ञात करता है जिससे इन्हें दूर करने के प्रयास किए जा सकें। निदानात्मक परीक्षणों के परिणाम प्रायः एक प्राप्तांक के रूप में न होकर पाठ्य वस्तु के विभिन्न पक्षों का पर अंश प्राप्तांकों के रूप में होते हैं। परीक्षण का कुल प्राप्तांक तो किसी छात्र की कुल सामूहिक ज्ञान या कौशल को बताता है, इसलिए यह निदानात्मक परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके विपरीत अंश प्राप्तांक विभिन्न पक्षों के संबंध में छात्र की स्थिति बताते हैं, जिससे उसकी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है। कुछ संप्राप्ति परीक्षण अनेक उप परीक्षणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनके कुल प्राप्तांकों को संप्राप्ति के द्योतक के रूप में व उपनिरीक्षणों के प्राप्तांकों को निदानात्मक मापांकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे परीक्षणों को संप्राप्ति परीक्षण बैटरी अचीवमेंट टेस्ट बैटरी कहते हैं। परंतु ऐसे परीक्षणों का प्रयोग निदानात्मक परीक्षण के रूप में करने से पूर्व परीक्षण की प्रकृति को सावधानी पूर्वक देख लेना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण ही कहे जाने चाहिए जो कुछ नैदानिक संकेत डायग्नोस्टिक क्लूज दे सकें। आजकल कोई भी परीक्षण जो एक से अधिक प्राप्तांक देता है को निदानात्मक परीक्षण कहा जाने लगा है। निसंदेह दो या अधिक प्राप्तांकों प्रदान करने वाला परीक्षण छात्र की कठिनाइयों या कमियों को का संकेत तो कर देता है, परंतु ये संकेत स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि भाषा परीक्षण छात्रों के शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज, शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी तथा शाब्दिक बोध वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के तीन प्राप्तांक देता हो, तब छात्रों द्वारा इन तीनों पर प्राप्त अंकों की सहायता से बताया जा सकता है कि छात्र तीनों क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में कमजोर है तथा किस क्षेत्र में उसका ज्ञान बोध पर्याप्त है। निदानात्मक परीक्षणों का शिक्षा प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक इनका उपयोग करके छात्रों की समस्याओं व कमियों का को जान सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण कर सकता है। छात्रों की कमियों या कमजोरियों के ज्ञान के अभाव में अध्यापक छात्रों को बार बार सामान्य ढंग से पढ़ाने में अपने समय, श्रम व शक्ति का अपव्यय करेगा तथा छात्र तब ही वांछित ज्ञान को ग्रहण कर पाने में असफल रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि अध्यापक यह देखता है कि छात्र अनुपात ज्ञात करने की विधि को बार बार समझाने पर भी विभिन्न समस्याओं में अनुपात करने में असफल हो रहे हैं, तो उसे इस प्रकरण पर निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करके छात्रों की कठिनाई या कमियों को ज्ञात करना चाहिए। छात्रों द्वारा अनुपात ज्ञात न कर पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अनुपात ज्ञात करने की विधि नहीं समझ पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि छात्र गुणा या भाग न कर पाने के कारण अनुपात की समस्याओं को नहीं कर पा रहे हों। इसके साथ यह भी हो सकता है कि कुछ छात्र गुणा न कर पाने के कारण तथा कुछ छात्र भाग न कर पाने के कारण अनुपात की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हों। निदानात्मक परीक्षण की सहायता से छात्रों की इन कमियों को जानकर अध्यापक पहले इन कमियों को दूर करेगा, तब अनुपात की समस्याएं छात्र स्वयं सही ढंग से हल कर लेंगे। स्पष्ट है कि छात्रों की वास्तविक कमजोरियों को दूर करे बिना पाठ को बार बार पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता। आवश्यकता छात्रों की कमजोरियों को दूर करने की है, जिससे वे पाठ से पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सकें। निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत होते हैं। प्रथम, किसी विशिष्ट विषय या प्रकरण के ज्ञानार्जन में छात्रों की कठिनाइयों, कमियों या कमजोरियों का पता लगाना। द्वितीय, अध्ययन प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों का पता लगाना। तृतीय, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के आधारों का पता लगाना। चतुर्थ, पिछड़े छात्रों की विशिष्ट कठिनाइयों को ज्ञात करना। पंचम, पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देना। अध्यापक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण हैं जिन्हें विद्यालयों के अध्यापक गण अपने स्थानीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बना लेते हैं। इन परीक्षणों की रचना अत्यंत सरल होती है। अध्यापक गण अपने अनुभवों, स्थानीय परिस्थितियों तथा छात्रों के उपलब्धि स्तर को ध्यान में रखकर इनका निर्माण कर लेते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण प्रायः प्रश्नों का एक ऐसा समूह होता है जिसे अध्यापक गण अपने विवेक से छात्रों की संप्राप्ति का मापन करने के उद्देश्य से तैयार करते हैं। कभी अध्यापकों के द्वारा बनाए परीक्षणों को अन्य अध्यापकों से संवादित व संशोधित कराया जाता है। इससे परीक्षण की गुणवत्ता बन जाने की संभावना रहती है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों में सम्मिलित प्रश्नों को बिना किसी मूल्यांकन के परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जाती है। परीक्षण के लिए मानकों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। स्पष्ट है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण तात्कालिक व स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किए गए परीक्षण होते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण निबंधात्मक भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं तथा लघुत्तर प्रश्न प्रकार के भी हो सकते हैं। इन तीनों प्रकार के परीक्षण की चर्चा आगे की जाएगी। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। मानकीकृत परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनमें पदों या प्रश्नों का चयन उनकी विशेषताओं से संबंधित अनुभाविक प्रमाणों के आधार पर किया गया हो, जिनके प्रशासन व अंकों की विधि स्पष्ट व निश्चित हो, जिनकी विश्वसनीयता व वैधता सुनिश्चित की गई हो तथा जिनके लिए मानक विकसित किए गए हों। स्पष्ट है कि मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा औपचारिक ढंग से किया जाता है। ये परीक्षण व्यापक जनसंख्या की उपलब्धि का मापन कर पाने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लाए जा सकते हैं। मानकीकृत परीक्षणों में प्रायः केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। मानकीकृत परीक्षणों के निर्माण की विधि अध्याय 11 में दी गई है। अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों की तुलना नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है। सारणी अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों की तुलना। आयाम अध्यापक निर्मित परीक्षण मानकीकृत परीक्षण। प्रथम विषय वस्तु। विषय वस्तु का निर्धारण अध्यापक के द्वारा परीक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले प्रकरण का चयन अध्यापक के द्वारा होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण में, जबकि मानकीकृत परीक्षण में विषय वस्तु का निर्धारण विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण में सम्मिलित किए गए प्रकरणों का निर्धारण विशिष्टीकरण तालिका बनाकर किया जाता है। निर्माण अध्यापक निर्मित परीक्षण में के निर्माण में शीघ्रता प्रश्नों का पूर्व परीक्षण नहीं और प्रश्नों के संशोधन का अभाव होता है, जबकि मानकीकृत परीक्षण निर्माण विधिवत होता है जब और प्रश्नों का पूर्व परीक्षण व पद विश्लेषण होता है, प्रश्नों का संशोधन संभव है। प्रशासन व अंकन अध्यापक निर्मित परीक्षण में कोई निश्चित नहीं। मानकीकृत परीक्षण में पूर्व निर्धारित तथा सभी के लिए समान। विश्वसनीयता अध्यापक निर्मित परीक्षण में निर्धारण नहीं होता विश्वसनीयता का। मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता ज्ञात व सुनिश्चित होती है। वैधता अध्यापक निर्मित परीक्षण वैधता का निर्धारण नहीं। मानकीकृत परीक्षण में वैधता ज्ञात व सुनिश्चित। मानक अध्यापक निर्मित परीक्षण में मानक का निर्धारण नहीं। मानकीकृत परीक्षण में स्थानीय राज्य या राष्ट्रीय मानक उपलब्ध होते हैं। उद्देश्य व प्रयोग अध्यापक निर्मित परीक्षण में विशिष्ट व सीमित कक्षा छात्रों या विद्यालयों के छात्रों की तुलना। मानकीकृत परीक्षण सामान्य व व्यापक विभिन्न कक्षाओं या विद्यालयों की तुलना की जाती है। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की तुलना की जाती है, इसका यह उद्देश्य है। निबंधात्मक परीक्षण एसे टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व चीन में इस प्रकार के परीक्षण के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। चीन से ये परीक्षण इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य देशों में पहुँचे। वर्तमान समय में सारी दुनिया में निबंधात्मक परीक्षण के अभिप्राय ऐसे परीक्षण से है जिसमें परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर निबंध के रूप में प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के परीक्षणों में परीक्षार्थीगण विस्तृत उत्तर देते हैं, जिससे व्यक्ति के अपने विचारों, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि का प्रभाव उसके द्वारा दिए जा रहे उत्तर पर पड़ता है। परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की छाप उसके उत्तर में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। निबंधात्मक परीक्षणों से एक ओर यहाँ परीक्षार्थियों के बौद्धिक ज्ञान का पता चलता है, वहीं उनकी उच्च स्तरीय मानसिक योग्यताओं जैसे तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, स्वतंत्र चिंतन, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक शक्ति आदि का मूल्यांकन हो जाता है। निबंधात्मक परीक्षण प्रायः अध्यापक निर्मित होते हैं तथा अपनी प्रकृति के कारण उच्च कक्षाओं के छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति व अन्य योग्यताओं के मापन में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे टेस्ट। विगत 2-3 दशकों में परंपरागत निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली ही आलोचना करने तथा नवीन प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को अपनाए जाने की मांग काफ़ी प्रबल हो रही है। निःसंदेह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अपनी कुछ विशेषता व उपयोगिता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निबंधात्मक प्रश्न पूर्णतः अनुपयोगी व निरर्थक हैं। निबंधात्मक परीक्षणों को भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिनके कारण कुछ परिस्थितियों में इनका प्रयोग अधिक श्रेयकर हो सकता है। निबंधात्मक परीक्षणों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। प्रथम, निर्माण तथा प्रशासन में सुगमता। द्वितीय, अल्पव्यय। तृतीय, परीक्षार्थी की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चतुर्थ, आलोचनात्मक चिंतन पर जोर। पंचम, लेखन शैली का मूल्यांकन संभव। षष्ठ, उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन संभव। सप्तम, विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन। अष्टम, व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव। नवम, गुणात्मक मूल्यांकन संभव। दसम, वांछनीय अध्ययन विधि के विकास में सहायक। एकादश, नकल की कम संभावना। निबंधात्मक परीक्षणों की कमियां, डिफेक्ट्स ऑफ एसे टेस्ट। यद्यपि निबंधात्मक परीक्षणों की अनेक विशेषताएं होती हैं तथा कुछ परिस्थितियों में इनका उपयोग अपरिहार्य होता है, इसके बावजूद भी निबंधात्मक परीक्षणों में अनेक कमियां होती हैं, जिसके कारण निबंधात्मक परीक्षणों की आलोचना की जाती है तथा इनका प्रयोग करने पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है। निबंधात्मक परीक्षणों की कुछ कमियां निम्नवत हैं। प्रथम, व्यक्तिनिष्ठता को स्थान। द्वितीय, रटंत स्मरण पर बल। तृतीय, निश्चित उद्देश्य का ना होना। चतुर्थ, पाठ्यवस्तु के प्रतिनिधित्व में कमी। पंचम, प्रशासन में एकरूपता नहीं। षष्ठ, कम विश्वसनीय। सप्तम, कम वैध। अष्टम, निदानात्मक उपयोग कम। नवम, प्रश्नों में प्रयुक्त शब्दों का छात्रों को बोध ना होना। दसम, हेलो प्रभाव। एकादश, कैरी ओवर प्रभाव। निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसे क्वेश्चंस। निबंधात्मक परीक्षणों में भिन्न प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रश्नों के कुछ प्रकार निम्नवत हैं। प्रथम, वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। दो, व्याख्यात्मक प्रश्न, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस। तीन, विवेचनात्मक प्रश्न, डिस्कशन क्वेश्चंस। चार, परिभाषात्मक प्रश्न, डेफिनेशन क्वेश्चंस। पाँच, उदाहरणार्थ प्रश्न, इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। छः, तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव क्वेश्चंस। सात, रूपरेखात्मक प्रश्न, आउटलाइन क्वेश्चंस। आठ, आलोचनात्मक प्रश्न, क्रिटिकल क्वेश्चंस। नौ, सूची प्रश्न, लिस्ट क्वेश्चन। दस, विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल क्वेश्चन। ग्यारह, वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। बारह, निर्वाचन प्रश्न, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। तेरह, सारांश प्रश्न, समरी क्वेश्चंस। चौदह, चयन प्रश्न, सेलेक्शन क्वेश्चंस। मुनरो तथा कार्टर ने निबंधात्मक प्रश्नों के निम्न 21 प्रकार बताए हैं। एक, चयनित पुनः स्मरण सेलेक्टिव रिकॉल, दो मूल्यांकन पुनः स्मरण इवैल्यूएटिव रिकॉल, तीन दिए आधार पर तुलना करना कंपैरिजन ऑन अ सिंगल बेसिस, चार सामान्य तौर पर तुलना करना कंपैरिजन इन जर्नल, पाँच निर्णय पक्ष या विपक्ष डिसीजन फॉर और अगेंस्ट, छः कारण या प्रभाव कॉजेज और इफेक्ट्स, सात व्याख्यान एक्सप्लेनेशन, आठ सारांश समरी, नौ विश्लेषण एनालिसिस, दस संबंध कथन स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप, ग्यारह उदाहरण इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स, बारह वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तेरह अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स, चौदह विवेचन डिस्कशन, पंद्रह उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ एम, सोलह समालोचना क्रिटिसिज्म, सत्रह रूपरेखा आउटलाइन, अठारह तथ्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, सोलह उन्नीस नवीन प्रश्न करना फार्मुलेशन ऑफ अ न्यू क्वेश्चन, बीस नवीन विधियां न्यू मेथड्स और प्रोसीडर्स, इक्कीस निष्कर्षात्मक चिंतन इन्फ्रेंटियल थिंकिंग, निबंधात्मक परीक्षणों में सुधार इम्प्रूवमेंट ऑफ एस्से टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षणों को अधिक उपयोगी विश्वसनीय तथा वैध बनाने के लिए उनमें सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत हो सकते हैं, प्रथम परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक रखनी चाहिए जिससे संपूर्ण पाठ्यवस्तु का उचित ढंग से प्रतिनिधित्व परीक्षण में हो सके, द्वितीय परीक्षण के निर्माण से पूर्व मापन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए तथा उनके अनुरूप विभिन्न प्रकार के निबंधात्मक प्रश्नों की रचना करनी चाहिए, तृतीय परीक्षण के अंकन को यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अंकन विधि का पूर्व निर्धारण करना चाहिए, चतुर्थ प्रश्नों में चयन की छूट कम से कम देनी चाहिए जिससे भाग्यवाद को हतोत्साहित किया जा सके, पाँच छात्रों के चिंतन सृजनशीलता कठिनाइयों आदि की जानकारी के लिए निबंधात्मक प्रश्नों को प्रक्षेपण प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, षष्ठ प्रक्षेपण प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न स्पष्ट सरल व छात्रों के समझने योग्य भाषा व शब्दावली में लिखे जाने चाहिए, क्लिष्ट भाषा में लिखे प्रश्न परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता को घटा देते हैं, सप्तम परीक्षण के प्रश्नों के लिए उचित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिससे छात्र निर्धारित समय सीमा में सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण नवीन प्रकार के परीक्षण हैं, इनका प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था, निबंधात्मक परीक्षण की आलोचना के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग बढ़ने लगा तथा वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उपयोग लगभग सभी विषयों में छात्रों के ज्ञानार्जन का मापन करने के लिए किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अभिप्राय ऐसे परीक्षणों से है जिनमें सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है, यदि परीक्षार्थी उस उत्तर को देता है तो उसे प्रश्न पर पूर्ण अंक मिलते हैं तथा यदि वह उस उत्तर को नहीं दे पाता है तो वह अंक शून्य कर प्राप्त करता है, स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य अंकन की वस्तुनिष्ठता से है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, इनकी सहायता से उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन कठिन होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण भी एक जटिल कार्य होता है, वैसे तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण अध्यापक निर्मित भी हो सकते हैं तथा मानकीकृत भी हो सकते हैं परंतु प्रायः वस्तुनिष्ठ परीक्षण मानकीकृत होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। विगत कुछ वर्षों से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग का चलन कुछ बढ़ गया है। अपनी कुछ विशेषताओं के कारण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को परंपरागत निबंधात्मक परीक्षणों के स्थान पर प्रयुक्त करने की मांग तो काफ़ी प्रबल होती जा रही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। प्रथम, अंकन में वस्तुनिष्ठता। द्वितीय, पाठ्यवस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व। तृतीय, लेखन गति व शैली पर विशेष बल नहीं। चतुर्थ, अधिक विश्वसनीय। पंचम, अधिक वैध। षष्ठ, मानकीकरण की संभावना। सप्तम, रटंत स्मरण को हतोत्साहन। अष्टम, निदानात्मक प्रयोग संभव। नवम, शिक्षा उद्देश्य पर आधारित। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कमियां, डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अनेक विशेषताएं होने के बावजूद भी इन परीक्षणों को सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जा सकता। अनेक कमियों के होने के कारण इन परीक्षणों की भी आलोचना की जाती रहती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कुछ प्रमुख कमियां निम्नवत हैं। प्रथम, परीक्षण निर्माण में कठिनता। द्वितीय, अनुमान से उत्तर देने को प्रोत्साहन। तृतीय, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभाव। चतुर्थ, नकल की संभावना। पंचम, उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन संभव नहीं। षष्ठ, व्यक्तित्व का परोक्ष ज्ञान नहीं। सप्तम, लेखन शैली पर ध्यान नहीं। अष्टम, व्यय साध्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अनेक प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं। प्रथम, पूर्ति प्रश्न, सप्लाई आइटम्स। फर्स्ट, पुनः स्मरण प्रश्न, रिकॉल आइटम्स। सेकंड, पूर्ति प्रश्न, कंप्लीशन टेस्ट। द्वितीय, चयन प्रश्न, सेलेक्शन आइटम्स। फर्स्ट, सत्यासत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स आइटम। सेकंड, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस आइटम्स। थर्ड, मिलान प्रश्न, मैचिंग आइटम्स। फोर्थ, वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन आइटम्स। निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विस्तार से चर्चा अध्याय 6 में की जा चुकी है। शैक्षिक गुणांक तथा संप्राप्ति गुणांक, एजुकेशनल कोसेंट्स एंड अचीवमेंट कोसेंट्स। बुद्धि लब्धि गुणांक, आईक्यू की सहायता से व्यक्तियों की मानसिक योग्यता को अभिव्यक्त करने में मिली सफलता तथा इसके प्रयोग को लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप शिक्षा मितिकों को शैक्षिक गुणांक तथा संप्राप्ति गुणांक के प्रत्ययों को प्रतिपादन करने का प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मानसिक आयु की तरह से शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज का प्रत्यय प्रस्तुत किया। उनके अनुसार किसी छात्र की शैक्षिक आयु वह आयु है जिस आयु के औसत बालकों के समकक्ष उसका शैक्षिक विकास हुआ हो। किसी छात्र की शैक्षिक आयु ज्ञात करने के लिए छात्र का ऐसा शैक्षिक संप्राप्ति परीक्षण दिया जाता है जिसके लिए आयु मानक उपलब्ध होते हैं। आयु मानक विभिन्न आयु के बालकों के औसत प्राप्तांक होते हैं। परीक्षण पर किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना आयु मानकों से करके यह ज्ञात कर लिया जाता है कि यह छात्र किस आयु के मानकों के बराबर अंक प्राप्त कर रहा है। जिस आयु के मानक के बराबर उसके अंक होते हैं वही उसकी शैक्षिक आयु कहलाती है। शैक्षिक आयु को वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज से भाग करके फिर 100 से गुणा करके शैक्षिक गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। अतः शैक्षिक गुणांक, एजुकेशनल कोसेंट का EQ ज्ञात करने का सूत्र निम्नवत है। शैक्षिक गुणांक EQ बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। स्पष्ट है कि यदि शैक्षिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी तो शैक्षिक गुणांक का मान 100 से अधिक जाएगा तथा छात्र को शैक्षिक दृष्टि से अधिक विकसित कहा जाएगा। शैक्षिक गुणांक का मान 100 से जितना अधिक जाता है छात्र उतना ही अधिक योग्य माना जाता है। इसके विपरीत यदि शैक्षिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो शैक्षिक गुणांक का मान 100 से कम जाता है तब छात्र को शैक्षिक दृष्टि से कम योग्य कहा जाएगा। शैक्षिक गुणांक का मान 100 से जितना कम जाता है वह उतना ही कम योग्य कहलाता है। शैक्षिक गुणांक का मान 100 आने का अर्थ है कि शैक्षिक तथा वास्तविक आयु बराबर है तथा छात्र की शैक्षिक प्रगति औसत स्तर की है। मानसिक योग्यता के आधार पर शैक्षिक प्रगति का आकलन करने के लिए संप्राप्ति गुणांक अचीवमेंट कोशेंट का प्रतिपादन भी किया गया। किसी छात्र का संप्राप्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए उसकी शैक्षिक आयु भी मानसिक आयु से भाग दे देते हैं तथा प्राप्त भागफल को 100 से गुणा कर देते हैं। अतः सूत्र रूप में संप्राप्ति गुणांक निम्न ढंग से ज्ञात करते हैं। संप्राप्ति गुणांक AQ बराबर शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि किसी छात्र को शैक्षिक आयु उसकी मानसिक आयु से अधिक है तब कहा जा सकता है कि यह छात्र अपनी मानसिक क्षमता से अधिक शैक्षिक प्रगति कर रहा है। ऐसे छात्र को उच्च संप्राप्तांक कहा जाता है। इसके विपरीत यदि शैक्षिक आयु मानसिक आयु से कम होती है तो इसका अर्थ यह है कि छात्र अपनी मानसिक क्षमता से कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर रहा है तथा ऐसे छात्र को निम्न संप्राप्तक अंडर अचीवर्स कहा जाता है। यह भी स्पष्ट है कि उच्च संप्राप्तांकों के लिए संप्राप्ति गुणांक का मान 100 से अधिक होगा तथा यह मान 100 से जितना अधिक होगा छात्र उतना ही अधिक उच्च संप्राप्तक होगा। इसके विपरीत संप्राप्ति गुणांक का मान 100 से जितना कम होगा छात्र उतना ही अधिक निम्न संप्राप्तक होगा। संप्राप्ति गुणांक का मान 100 होने का अर्थ है कि छात्र की शैक्षिक आयु उसकी मानसिक आयु के बराबर है तथा वह अपने मानसिक विकास के अनुरूप शैक्षिक प्रगति कर रहा है। बुद्धि लब्धि गुणांक, शैक्षिक गुणांक तथा संप्राप्ति गुणांक तीनों परस्पर संबंधित हैं। इनके संबंध को निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। IQ बराबर शैक्षिक गुणांक बटे संप्राप्ति गुणांक गुणा 100। संप्राप्ति गुणांक AQ बराबर शैक्षिक गुणांक बटे बुद्धिलब्धि गुणांक गुणा 100। शैक्षिक गुणांक EQ बराबर संप्राप्ति गुणांक गुणे बुद्धिलब्धि गुणांक बटा 100। स्पष्ट है कि इन तीनों गुणांकों में से किन्हीं दो गुणांकों का ज्ञान होने पर तीसरे गुणांक को ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि मानकीकृत परीक्षण के विकास के प्रारंभिक चरणों में शैक्षिक तथा संप्राप्ति गुणांकों का काफ़ी प्रयोग किया गया परंतु बाद में इनके संबंध में कुछ आलोचनाएं की जाने लगीं तथा इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। इन दोनों गुणांकों की आलोचना का मुख्य बिंदु शैक्षिक आयु ज्ञात करने के समय आने मानी गई मान्यताएं हैं। शैक्षिक आयु ज्ञात करते समय आयु मानकों का उपयोग किया जाता है। शैक्षिक संप्राप्ति के किसी परीक्षण पर आयु मानक ज्ञात करना एक कठिन कार्य है। इसके साथ साथ प्राप्त आयु मानकों के आधार पर छात्रों की शैक्षिक आयु ज्ञात करना भी प्रश्नचिन्ह से मुक्त कार्य है। यदि सभी बालकों को एक समान पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक विधियों आदि की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है तब तो आयु मानकों के आधार पर शैक्षिक आयु ज्ञात करना उचित होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक विधियों से शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए आयु मानकों का कोई तर्क संगत उपयोग शैक्षिक आयु ज्ञात करने में नहीं किया जा सकता। वास्तव में आयु मानक तो केवल स्थानीय महत्व के हो सकते हैं। इसके साथ ही किन किन विषयों की शैक्षिक संप्राप्ति को आयु शैक्षिक आयु के संबंध में ध्यान में रखा जाए तथा किस प्रकार के से, यह भी एक कठिन प्रश्न है। छात्र गणित, भाषा विज्ञान आदि विषयों में भिन्न भिन्न शैक्षिक आयु रख सकता है तथा उसकी कुल शैक्षिक आयु कैसे ज्ञात की जाए? क्या इन सभी का औसत लेकर या अन्य किसी ढंग से यह निर्धारित करना भी कठिन कार्य है? यही कारण है कि विभिन्न प्रतिदर्शों तथा विभिन्न परीक्षणों के प्रयोग से शैक्षिक गुणांक व संप्राप्ति गुणांक भिन्न भिन्न आते हैं। इन गुणांकों के त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक होने के कारण इनका प्रचलन कम होता जा रहा है। सारांश, शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षणों को संप्राप्ति परीक्षण व निदानात्मक परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण व मानकीकृत परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण व वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण व अशाब्दिक परीक्षण तथा मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण व क्रियात्मक परीक्षण में बांटा जा सकता है। संप्राप्ति परीक्षण छात्रों के द्वारा विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षण विभिन्न विषयों या प्रकरण में छात्रों की सफलता के कारणों का पता लगाने में कार्य करते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षणों की रचना अध्यापकगण अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लेते हैं, जबकि मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण व्यापक उपयोग की दृष्टि से प्रश्नों की विधिवत ढंग से रचना व चयन करके किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षणों में कम संख्या में प्रश्न होते हैं जिनका विस्तृत उत्तर देना होता है। इसके विपरीत वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तथा छात्रों को या तो सही उत्तर का चयन करना होता है अथवा अति संक्षेप में सही उत्तर बताना होता है। शाब्दिक परीक्षण में समस्याएं शब्दों व भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं तथा सही शब्द, वाक्य, गद्यांश आदि का चयन करके अथवा लिखकर उत्तर देना होता है। अशाब्दिक परीक्षण में चित्रों या वस्तुओं के माध्यम से समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा छात्रों को सही चित्र या वस्तु का चयन करके रचना करके अपना उत्तर देना होता है। मौखिक परीक्षणों में प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं तथा छात्रों को मौखिक ही उत्तर देना होता है। लिखित परीक्षणों में प्रश्न व उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। क्रियात्मक परीक्षण में कुछ करके परीक्षार्थी को अपने उत्तर देने होते हैं।